प्रथम स्कंद अध्याय नवा श्री भीष्म देव का देह त्याग श्लोक क्रमांक 32। श्री भीष्म उवाच इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। यू कैन रीड द वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड वन मिनट आई कैन गिव द माइक। कैन टेक दिस। What to a translation?
Purport.
What to a meaning?
Okay. Then translation.
Yeah.
And then purport. Sri Bhishma Uvacha. Sri Bhishma Deva Manale. Iti. Ase. Mati. Vichar Bhavana. Iccha. Upakalpita. Guntun Thevli. Vitrushna. Indriya. Vasnantun Mukta. Bhagavati. Bhagavantancha Thikani. Sattvat. पुंगवे भक्तांच्या नित्यांमध्ये विभूंनी महान अशा त्यामध्ये स्वसुखम स्वसमाधान उपगते ज्याला प्राप्त आहे क्वचित कधी कधी विहरतून दिव्य सुखामधून प्रकृतीम या भौतिक जगात उपयेशू स्वीकार करतो यत ज्यापासून भव सृष्टी प्रवाह निर्माण होते आणि नष्ट होते। भाषांतर श्री भीष्मदेव म्हणाले आतापर्यंत माझे विचार भावना इच्छा या विविध विषयात आणि विहित कर्मात गुंतलेल्या होत्या त्या सर्व आता मला सर्व शक्तिमान भगवान श्रीकृष्णांच्या चरणी लावू द्या। ते स्वसमाधानी आहेत त्यांच्यापासून ही भौतिक सृष्टी निर्माण झाली आहे तरीही ते भक्तांचे मार्गदर्शक असल्यामुळे कधी कधी या भौतिक जगात अविरत होऊन दिव्य सुखाचा आस्वाद घेतात। तात्पर्य भीष्मदेव एक धुरंधर राजकारणी होत कुरु राजवंशाचे प्रमुख होत थोर सेनापती होते तसेच क्षत्रियांचे नेते होते। त्यांच्या मनात अनेक गोष्टींबाबत विचार चालत असे त्यांची बुद्धी भावना इच्छा विविध विषयात संलग्न असे। आता शुद्ध प्रेममयी भक्ती घडावी म्हणून त्यांनी विचार शक्ती अनुभव शक्ती आणि इच्छाशक्ती या सर्व पूर्ण रूपाने परमचेतन भगवान श्रीकृष्णांच्या ठिकाणी लीन करण्याची इच्छा होती। श्रीकृष्णांचे भक्तांचे नाते व सर्व शक्तिमान असे येथे वर्णन आलेले आहे। जरी ते स्वतः मूळ भगवंत असले आहेत तरी आपल्या शुद्ध भक्तांना प्रेमभक्तीचे वरदान देण्यासाठी ते या भूलोकात अवतीर्ण होतात। कधी ते आपल्या मूळ रूपात येतात तर कधी श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपाने अवतीर्ण होतात। दोघेही भक्तांचे नेतेच आहेत। शुद्ध भक्तांना भगवंतांच्या सेवेविना कोणतीही इच्छा होत नसे म्हणून त्यांना सात्वत असे म्हणतात। भगवंत अशा सात्वतांच्या मध्येच सर्वश्रेष्ठ प्रमुख आहेत। भीष्मदेवांना त्यामुळे अन्य कोणतीही इच्छा नाही। सर्व प्रकारच्या भौतिक वासनांपासून शुद्ध झाल्याशिवाय भगवंत कोणाचे नेते होत नाहीत। इच्छा नष्ट करता येत नाहीत परंतु शुद्ध कराव्या लागतात। भगवद्गीतेत स्वतः भगवंत सांगतात की जे भक्त निरंतर त्यांच्या सेवेत रममान झालेला असतो त्याच्या अंतःकरणात राहून ते त्याला मार्गदर्शन करतात। असे मार्गदर्शन कोणत्याही भौतिक हेतूच्या पूर्तीसाठी दिले जात नाही ते केवळ भगवंताकडे जाण्यासाठी असते। गीता 10.10 जेव्हा सामान्य मनुष्य भौतिक प्रकृतीवर स्वामित्व करू इच्छितो तेव्हा भगवंत केवळ त्याला अनुज्ञास देत नाही तर त्याचे साक्षी म्हणून राहतात आणि अशा भक्ताला ते त्याच्याकडे येण्याचे मार्गदर्शन कधी करत नाहीत। भक्त आणि अभक्त अशा वेगवेगळ्या जीवांशी परमेश्वराच्या असलेल्या संबंधात हा फरक आहे। ज्याप्रमाणे राजा स्वतंत्र नागरिकांवर आणि कैद्यांवर राज्य करतो त्याचप्रमाणे भगवंत सर्वच प्राणीमात्रांचे नियंता आहेत पण त्यांचे भक्ताशी आणि अभक्ताशी असलेले संबंध मात्र वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात। अभक्त लोक परमेश्वराकडून मार्गदर्शन घेण्याची कधीच काळजी वाहत नाहीत त्यामुळे ते त्यांच्या बाबतीत स्वस्थ असतात तरी ते त्यांच्या सर्व हालचाली पाहत असतात आणि त्यांना शुभाशुभ फळेही देत असतात। भक्त हे लौकिक चांगल्या वाईटच्या पलीकडे असतात, ते दिव्यत्वाच्या मार्गांवर पथिक असतात, त्यामुळे त्यांना भौतिक इच्छाच उरलेल्या नसतात. भक्ताला हे पुरेपूर माहीत असते की भगवान श्रीकृष्ण हेच आदिनारायण आहेत, कारण भौतिक सृष्टी त्यांच्यापासून उगम पावते. ते कर्णोदक्षा विष्णू हे श्रीकृष्णांचे स्वानस्वरूप आहेत. भगवंतालाही आपल्या निष्ठावंत भक्तांची संगती हवीच असते व त्यांच्यासाठी ते पृथ्वीतलावर अवतीर्ण होतात आणि त्यांना संजीवन देतात. ते केवळ स्वतःच्या इच्छेनेच अवतार धारण करतात, ते भौतिक प्रकृतीच्या बंधनात नाहीत, म्हणून त्यांना विभू असे म्हटले आहे. कारण त्यांच्या भौतिक प्रकृतीच्या नियमांचे बंधन त्यांच्यावर भौतिक प्रकृतीच्या नियमांचे बंधन चालत नाही.
ओम अज्ञानतिमिरांध्रस्य हरे कृष्ण. मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है कि आज हम अपने मंदिर में हमारा कार्यक्रम शुरू किए हैं. अपना मंदिर क्योंकि अपना लैंड है. एक्चुअली सब भूमि गोपाल की. पूरा पृथ्वी जो है सर्वलोक महेश्वर, सब जगह जो है वो भगवान का ही है. एक्चुअली असली मालिक जो है हम लोग, टेनेंट है. शायद सरकार बोले कि हमारा लैंड है, वो सरकार का भी नहीं है, सरकार भी बदलता रहता है. कुछ साल पहले अंग्रेजों का जगह था, तो लोग आएंगे लोग जाएंगे, पर पृथ्वी ही रहती है. बीच में हिरण्याक्ष ने ले लिया था, बोला ये मेरा है, अंदर डाल दिया था. तो सब अंततः सब कुछ भगवान का ही है, पर इसे स्वीकार करना कि ये भगवान का है और ये लैंड जो है 3/4 acre जो भी ये भगवान का है. और भगवान का मतलब है अगर जिसका है उसकी प्रसन्नता के लिए उसके इच्छा अनुसार उस जगह को उपयोग किया जाए, इसका मतलब वो जगह सही में भगवान का है. हम स्वीकार करते हैं ये जगह भगवान का है, और क्योंकि भगवान का है, भगवान ने जिस लिए चाहा है, जिस प्रकार आदेश दिए हैं, उस प्रकार से इस जगह का उपयोग किया जाएगा. वो मंदिर है एक्चुअली. अगर वो भावना रहे तो हम लोग जहां भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, और जो चीज भी हमें दिया गया है वो एक्चुअली मंदिर बन जाता है. तो ये हमारा दादा परदादाओं का अभी एंसेस्ट्रल होम. लोग अपने दादा परदादाओं के घर में जाके रहना चाहते, बोलते हैं मेरे दादाजी ने बनाया. तो ऐसे पिताहम अस्य जगतो माता धाता पिताहम. तो बहुत सुंदर ये अनुभूति होती है कि हम अपने दादा परदादा के यहां बैठे हुए और उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं. तो मैं जब यहां कुछ समय पहले आया था, मैंने सोचा अभी सिस्टमैटिक भागवतम करेंगे, तो भागवतम उसी तरह से चालू है. अभी 9वें अध्याय में आए हुए, और पिछले बार हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार भीष्म पितामह अपना शरीर छोड़ने के लिए जब तैयार थे, भगवान बड़े प्रेम पूर्वक, क्योंकि भीष्म की पूरी जीवन की इच्छा ये थी कि कृष्ण को मैं प्रसन्न करूं, और जो कुछ भी वो कर रहे थे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे, कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कर रहे थे, कृष्ण की इच्छा के अनुसार कर रहे थे. और इसीलिए प्रेम पूर्वक भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम्, क्योंकि पूर्ण रूप से भीष्म पितामह जो एक महाजन है उन्होंने जो कुछ भी अपने जीवन में किया अंततः कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया, कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। आज जब सबसे जरूरत समय आ गया, सबसे बड़ा जरूरत समय कब है हमको, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, एंड वेन आर वी इन मोस्ट नीड एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय सबसे जरूरत पड़ती है हमारे मित्र की। सहृदम सर्वभूतानाम, भगवान भीष्म पितामह की हृदय की अंदरूनी इच्छा को जानते हुए, उनकी इच्छा थी, दो इच्छा थी एक्चुअली, दो इच्छा थी कि मृत्यु के समय मैं भगवान के सुंदर मुखारविंद का दर्शन कर पाऊं और उनका स्मरण करते हुए मैं शरीर त्यागूं, और दूसरी हृदय पूर्वक इच्छा थी कि भीष्म युधिष्ठिर महाराज और ये सारे पांडव इतने अच्छे भक्त हैं और इन्होंने पूरे जीवन में सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ देखा है, मरने से पहले कम से कम इनको मैं बड़े सुखी आनंद और सुख साम्राज्य, पूरे विश्व का साम्राज्य जो युधिष्ठिर महाराज चलाने योग्य हैं, उनको एटलीस्ट मैं ऐसे देख के अगर मैं शरीर छोड़ूंगा तो मैं शांत से शरीर छोड़ूंगा, क्योंकि ये मूर्ख दुर्योधन इन लोगों को वो साधन नहीं दे रहा है, और सही में पूरी विश्व की भलाई तब होगी जब युधिष्ठिर महाराज का साम्राज्य होगा, ये उनकी अंदरूनी इच्छा थी। और भगवान आदान प्रदान करते हुए, ये प्रेम का आदान प्रदान है भगवान का भक्तों के साथ, बाहरी रूप से कोई नहीं समझ पा रहा था, बाहरी रूप से नहीं समझ पाते हैं एक्चुअली हम लोग कि भीष्म पितामह बाणों की छया पे लेटे हुए और हम लोग बोलते महाजन है वो गलत पक्ष में लड़ रहे थे, तो बाहरी दृष्टिकोण से हम नहीं समझ पाएंगे चीजों को। यहां जो आदान प्रदान हो रहा है भीष्म पितामह और भगवान के बीच में, एक प्रकार का रासलीला हो रहा है, इधर भी सुंदर आदान प्रदान हो रहा है प्रेम का। तो शास्त्र की दृष्टि से, सुखदेव गोस्वामी की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तब हम लोग देख पाएंगे कि क्या प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, और इसलिए भीष्म पितामह का हृदय गदगद हो गया। और ऐसा भगवान ने इंतजाम किया, साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, पांडव हैं उनको सबसे प्रिय और शुद्ध भक्त पांडव हैं, और विश्व के पूरे एक्चुअली ब्रह्मांड के जितने सारे बड़े बड़े देवऋषि राजऋषि ब्रह्मऋषि सब लोग वहां हैं, सब महानुभाव वहां खड़े हैं। ये एक सुंदर आदान प्रदान और एक परफेक्शन ऑफ लाइफ, कैसा जीवन की परिपूर्णता भीष्म पितामह ने प्राप्त किया सिर्फ देखने के लिए। और इस समय भगवान के आज्ञा अनुसार युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का भीष्म पितामह ने सांत्वना दी और उनको तृप्त किया, और अब जस्ट शरीर छोड़ने वाले हैं अभी और कुछ सांस बचे हैं, उस समय तो इतना ही थोड़ा बाकी बचा हुआ है शरीर में ताकत, उस समय जो व्यक्ति कहता है तो एक एक शब्द भी नाप तौल के अपने हृदय से जो है वही कहेगा। तो ये जो शब्द हैं अभी भीष्म पितामह जो प्रार्थना करने वाले हैं, अभी वो सब बंद कर दिए, मतलब सारा दूसरे जो विचार सब थे जो भौतिक संसार में चलाने के लिए जरूरी था, वो सब विचारधाराओं को बंद करके अपने हृदय के अंतरंग जो इच्छा है वो भी प्रकट कर रहे हैं। अभी जो उनके हृदय की जो कोर, हृदय में एकदम अंतरंग जो इच्छा है और जो विचार है, वो विचार अभी निकल रहा है उनके हृदय से, और एक एक शब्द भी जो है इट इज लोडेड साक्षात्कार से और उनकी भावना से भरा हुआ है। तो अभी भीष्म पितामह कह रहे हैं, श्री भीष्म उवाच, ये महाजन भीष्म के जिनको भागवत में इसलिए बताया गया है कि उन्होंने अपने जीवन की परिपूर्णता कैसे शरीर छोड़ना है आदर्श रूप से दिखाया। इनके बाद सिर्फ एक ही व्यक्ति ने ऐसा दिखाया, वो है हरिदास ठाकुर। जब हरिदास ठाकुर शरीर छोड़ रहे थे, सब लोगों ने भीष्म पितामह का शरीर छोड़ना याद किया। और यहां ये एक एक श्लोक भी बहुत ही मधुर है, इसको हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले एक दो दिन में। एक एक श्लोक भी बहुत ही रसमय है। रासलीला सिर्फ दशम स्कंद में नहीं है, यहां भी रासलीला है, हम लोग जब चर्चा करेंगे। और यहां प्रेममय रस का आदान प्रदान हो रहा है, अलग रस में अपने अपने रस के अनुसार भगवान के साथ आदान प्रदान कैसा हो रहा है। बाहर से कुछ और है पर अंदर से क्या हो रहा है ये सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से सुनेंगे तब पता चलता है। नहीं तो बाहर से लग रहा है अभी कोई भी मरने वाला है, कोई सब लोग आके देख रहे हैं, ये बेचारा रो रहा है। मरते वक्त बहुत सारे लोग रोते रोते मरते, मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, अभी वहीं से रह गया, ये बिल्डिंग कंप्लीट ही नहीं हुआ, मेरा बच्चा को डॉक्टर का एंट्रेंस मिला ही नहीं, उसको कॉन्वेंट में स्कूल में एडमिशन मिला ही नहीं, रोते रोते उसकी आंखों में भी आंसू आती है, आसपास के सब लोग खड़े रहते हैं, वो लोग भी रोते रहते, ये भी रोते रहते हैं। और यहां भी भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू छूट रहा है, युधिष्ठिर महाराज की आंखों से छूट रहा है, सारे ऋषि मुनियों के आंखों से आंसू निकल रहा है, और भीष्म पितामह के आंखों से तो नदी जैसे बह रही है। पर ये अलग आंसू है, ये अलग प्रकार के आंसू है, दिव्य आनंद का अनुभूति हो रही है। और यहां कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भीष्म पितामह, इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषी यद भव प्रवाह। आज सिर्फ दो शब्द पे चर्चा करेंगे थोड़ा ये बहुत सारे हैं, पर ये कहते हैं कि भीष्मदेव कहते हैं कि इति मति, मेरी मति जो अभी तक बहुत सारे चीजों में जिम्मेदारियों में लगी हुई थी, कार्यों में लगी हुई थी, विचारों में लगी हुई थी, इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा। ये एक भक्त कह रहे हैं, इति मति ही उपकल्पिता, मति मतलब थिंकिंग फीलिंग विलिंग, मन का जो सूक्ष्म शरीर है उसका विचारधारा भावना किस प्रकार का, सोच और इच्छा, इच्छा शक्ति, हाँ दैट वाज द थ्री ना, व्हाट इज द ट्रांसलेशन मराठी, हाँ विचार भावना और इच्छा, ये जो मन की है। इति मतिर उपकल्पिता, उपकल्पिता का मतलब है कि पूर्ण रूप से एक जगह उसे, और द ट्रांसलेशन है, हाँ एक जगह उनको इन्वेस्ट, मतलब डालना, जैसे बैंक में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट ऑल ओवर मनी, इन्वेस्ट ऑल ओवर एनर्जी, इन्वेस्ट मतलब एक जगह डालना। एंड वितृष्णा, वितृष्णा मतलब सारे भौतिक इच्छाओं से मुक्त, हमारी इच्छा, हमारे विचारधारा और हमारे भावना भी जन्म से लेकर मृत्यु तक, दिन से लेकर रात तक, सोमवार से लेकर रविवार तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमेशा बहुत सारे विचार हमारे मन से गुजरते रहते हैं, बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न हो रही है और बहुत सारे भावना प्रकट हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है, ऐसा करूंगा वो करूंगा, इच्छाएं, तो ये स्वाभाविक है। और हर एक व्यक्ति हमारे सोच, हमारे शब्द और हमारे क्रिया, मनसा वाचा कर्मण, हम देखते हैं इन इच्छाओं को, इन विचारों को और इन भावनाओं को पूर्ण करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं हम लोग, हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति भाग दौड़ कर रहा है। मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं, उन्हें पूर्ण करने के लिए कमाना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, बहुत सारी विचार हैं और विचारधारा में रखते रहते, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, और बहुत सारी इच्छाएं आती रहती है इनके कार्यरत होने पर ये इच्छाएं कैसी हैं, ये इच्छाएं जो हैं जिस हद तक हमारे मनसा वाचा कर्ण, हमारे विचार, हमारे वाणी और हमारी क्रिया, जिस हद तक अगर कृष्ण भावना के विरुद्ध और कृष्ण भावना के बिना हो तो वो हमें भौतिक बंधन में फंसाता रहता है। जैसे एक मकड़ा अपना जाल बनाता है, मकड़े के जाल में कभी कभी एक कीड़ा उड़ते उड़ते आके फंस जाता है। मकड़े के जाल में जब कीड़ा फंस जाता है चिपक जाता है, वो शायद उसके एक पैर चिपक गया या दो पैर चिपक गया, तो उसको निकालने का इच्छा करता है वो, तो उसकी इच्छा है निकलने की, तो शायद आठ पैर का कीड़ा है तो दूसरा आठ पैर लगा के छह पैर लगा के इसको खींचने का कोशिश करता है, तो छह पैर दबा के दूसरा खींचा तो छो भी अटक जाता है, और जब आठों पैर अटक गया तो कैसा निकलेगा, शरीर को बल उसको खींचना चाहता है, शरीर भी अटक जाता है, और इस तरह से जितना वो बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है उतना एकदम फंस जाता है और घूम घूम के अंत में एक सफेद गोला बन जाता है, बस पूरा वो घूम फिर के अटक जाता है। बस इस तरह से हमारी मति, हमारी इच्छा, हमारे वो सबको पूर्ण करने के लिए 24 घंटे हम लोग कार्यरत हैं, हमारी भावना उसी में है, जहां हमारी इच्छा और जहां हमारे विचार हैं हमारी भावना वही है, तो उसमें हम इतने फंस जाते हैं कि मृत्यु के समय उस समय बोलो सबको छोड़ के हरे कृष्णा जपो, कैसा होगा? लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। पूरा जीवन हमने तैयारी नहीं किया और परीक्षा में बोलो अभी फर्स्ट आना तुमको, वाह, कभी पुस्तक नहीं खोला तुमने, ओपन बुक एग्जाम भी देंगे तो भी उसको समझ नहीं आएगा कहां से कॉपी करना है, क्योंकि कभी खोला ही नहीं जिंदगी में उसने। तो जिस व्यक्ति ने कभी भगवत गीता खोला ही नहीं जिंदगी में, उसको मन मना भव मत भक्तो, वाह, ये तो जिसने पूरा जीवन भर तपस्या किया है, थोड़ा प्रैक्टिस किया है, सुबह उठ के कम से कम 16 माला किया है, उसके लिए कम से कम शायद हरे कृष्ण मुंह से निकल जाएगा, पर कभी प्रैक्टिस नहीं किया, ऑफ कोर्स एक बाय चांस अगर भगवान ने कृपा कर दिया, जैसा टीचर ने बोला ग्रेस मार्क्स, चलो कुछ भी नहीं लिखा है फिर भी इसको 100, ओ वेरी रेयर, वो बहुत रेयर केस है, उसका अपेक्षा करके हम लोग नहीं रह सकते, हमको करना है साधना। तो इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा, भीष्म पितामह स्वेच्छा से, ओके इनफ इज इनफ, हो गया, सब साइड में रखो, सब रख के अब मेरे विचारधारा, मेरी भावना, मेरी इच्छा पूर्ण रूप से कृष्ण के चरणों में, कृष्ण के विचार में एक टक करना। कैसे कर पाए वो? क्योंकि ये क्यों हो सका? क्योंकि उनका पूरा जीवन कृष्ण भावना में था। हालांकि यहां प्रभुपाद कहते हैं कि देखिए, पहला शब्द, पहला वाक्य प्रभुपाद का इतना महत्वपूर्ण है, बिकॉज भीष्म देव वॉज ए स्टेट्समैन, उनका अलग अलग रोल था, एक रोल क्या था, ही वॉज ए स्टेट्समैन, स्टेट्समैन मतलब एक तरह का पॉलिटिकल लीडर, मंत्री थे वो, धृतराष्ट्र को के मंत्री के रूप में उनको मदद करते थे कि कैसा चलाना है, राज्य कैसा चलाना है, उन्होंने वचन दिया था, इसीलिए जो भी हस्तिनापुर का राजा है उनका मैं मंत्री के रूप में, मैं राजा नहीं बनूंगा, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था पहले, वो बड़ी कथा है, वो नहीं कहते, आप लोग सबको मालूम है, इसीलिए वो भीष्म के नाम के प्रसिद्ध हो गए, क्षत्रिय होकर भी सब प्रकार से योग्यता होते हुए भी अपनी पिता की प्रसन्नता के लिए उन्होंने पूरे आजीवन राजा नहीं बनेंगे,
फिर उसने कहा कि नहीं नहीं राजा नहीं बनोगे, पर तुम्हारा बेटा जो है वो राजा बन जाएगा। बोले ठीक है, बेटा का सवाल, ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, मैं शादी नहीं करूंगा तो बेटा का नहीं होगा। ठीक है चलो, फिर मेरी बच्ची को सत्यवती को शांतनु महाराज से शादी कराएंगे। तो मंत्री के रूप में उन्होंने वचन दिया था कि राज्य को मैं अच्छे से संभालूंगा, तो मंत्री के रूप में पूरा गाइडेंस दे रहे थे, काउंसलर, काउंसलर फॉर द किंग। राजा का काउंसलर मतलब मामूली व्यक्ति नहीं, सब प्रकार का पूरा उसको ज्ञान होना चाहिए, राज्य कैसा चलाना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कहां टू बिकम ए पॉलिटिकल पंडित। आजकल बहुत कंसल्टेशन करने जाते हैं ऐसे लोग, बहुत बुद्धि चाहिए, बहुत दिमाग चाहिए, और हमेशा बिजी रहते हैं ऐसे लोग, क्योंकि पूरा एक राज्य को चलाना, पूरे साम्राज्य को चलाना आसान नहीं है। हम देखते कोई बड़े बड़े महाराजा के जो मंत्री होते हैं, हमेशा वो ये करते रहते हैं कैसा चलाना चाहिए राज्य। एक छोटा संस्था चलाने के लिए हम लोग इतने लोग दिमाग अड़ा के घंटों घंटों बैठ के सोचना पड़ता है कि कैसा अच्छा से चलाए इस छोटा इन जगह को। तो पूरे राज्य को चलाना मतलब आसान नहीं है, बहुत विचार हमेशा सोचना पड़ता है, पढ़ते रहना पड़ता है, जानना ना पड़ता है, एंड यू मस्ट बी रियली क्लेवर और स्ट्रीट स्मार्ट, जैसे चाणक्य हमेशा एक जगह बैठे पर उनका दिमाग एकदम चलता रहता था, कैसे चंद्रगुप्त को ये और राज्य दिया और राज्य देने के बाद कैसे चलाया जाए। तो एक ही वॉज ए स्टेट्समैन, बहुत बड़ा जिम्मेदारी। दूसरा, द हेड ऑफ द कुरु डायनेस्टी, पूरे कुरु वंश जो एक रॉयल डायनेस्टी है उसके अग्रगण्य, सीनियर मोस्ट ऑफ कुरु डायनेस्टी। हम देखते हैं एक परिवार का कोई अध्यक्ष है या एक सीनियर व्यक्ति है तो उसका कितना जिम्मेदारी है कि बच्चे कैसे हैं, पोते लोग सब ठीक है क्या, उनको मार्गदर्शन करना, उनको खुश रखना, उनको प्रोत्साहन देना, सबका ध्यान रखना। और ये कोई मामूली ऐसे छोटे बच्चे नहीं है, कोई परिवार नहीं है, पूरे कुरुवंश, और कितने सारे बच्चे उनके कुरुवंश में, और सब लोग भीष्म पितामह से सबको प्रेम करते थे, सबकी भलाई चाहते थे, सबके लिए वो समय निकालते थे, सबके उनके बारे में सोचते रहते थे। तो एक राज्य को संभालने का जिम्मेदारी, दूसरा अपने सारा परिवार वंशज को चलाने का जिम्मेदारी, वो सब बिजी रहते थे। वो भीम कैसा हो रहा है, उसको ठीक चल रहा है क्या, उनको सबको अच्छा ट्रेनिंग मिल रहा है क्या। भीष्म की इच्छा थी कि एक अच्छा आचार्य मिलना चाहिए इनको धनुर्विद्या सब सिखाने के लिए। तो जैसे पता चला हां ये द्रोणाचार्य ही है, तुरंत उनको अपॉइंट किए ताकि हमारा ये वंशज के हर एक व्यक्ति को अच्छा ट्रेनिंग मिले। तो एक वंश के अग्रगण्य होने के कारण वो उनका जिम्मेदारी। एक ग्रेट जनरल, लड़ाई हमेशा लड़ते रहते थे, कुछ ना कुछ तो लड़ाई चलता रहता था, तो लड़ाई में ही वॉज अ जनरल, कमांडर इन चीफ, सेनापति, पूरी सेना को संभाल रहे थे। और दूसरा, लीडर ऑफ द क्षत्रिय, सारे क्षत्रियों के वो नेता थे। तो ये चार, ये तो कम से कम चार रोल है, उसके अलावा बहुत सारी जिम्मेदारियां थी उनकी, बट ये प्रमुख रेस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी हम लोग इतने अपने जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं कि कृष्ण को हम लोग भूल जाते हैं। पर भीष्म पितामह ये सारे जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी, और अगर कभी कभी इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अंत में हम लोगों को भगवान की स्मरण नहीं हो पाएगी, पर ये कैसा कर पाए। हिज माइंड वॉज स्ट्रून ओवर सो मेनी सब्जेक्ट्स एंड हिज थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग वर एंगेज्ड इन डिफरेंट मैटर्स। नाउ इन ऑर्डर टू अचीव प्योर डिवोशनल सर्विस ही वॉन्टेड टू इन्वेस्ट ऑल पावर्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग एंटायरली इन द सुप्रीम बींग लॉर्ड कृष्णा। ये कब हो सकता है, ये कैसे कर पाए भीष्म पितामह? क्योंकि एक्चुअली उनके जितने सारे जिम्मेदारियां थे, उस जिम्मेदारियों को उन्होंने कृष्ण भावना भावित होकर निभाया, और इसीलिए हालांकि कई सारे जिम्मेदारियां निभा रहे थे, वो कृष्ण भावना भावित थे 24 घंटे। आजकल मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो पुस्तक लिखते हैं, उसमें वो लिखते हैं कि वी हैव डिफरेंट रोल्स, हर एक व्यक्ति को अपना जीवन चलाना है, अगर अच्छे तरह से चलाना है तो दो चीज जानना जरूरी है, हमारा रोल क्या है। आप ये कर सकते हैं, आप आज घर जाइए और एक पन्ना लीजिए बड़ा सा पेपर, और आप क्या क्या पात्र इस जीवन में, आप क्या क्या पात्र निभा रहे हैं। एक है मैं पिता हूं या मैं माता हूं, तो माता का एक पात्र, पिता का पात्र, हर एक व्यक्ति पुत्र या पुत्री है वो भी एक पात्र है, पति या पत्नी है वो भी एक पात्र है, ऑफिस में कोई सेवा है जो भी डेसिग्नेशन है वो भी हमारा एक पात्र है, भक्त है वो भी एक पात्र है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कोई एक डेसिग्नेशन है, टेंपल प्रेसिडेंट है या जो भी है वो भी एक पात्र है, कोई संस्था के मुख्य है वो भी एक पात्र है। कभी कभी आदमी किसी एक पात्र में इतना अटक जाता है कि दूसरे सारे पात्र को भूल जाता है और बाद में तकलीफ हो जाता है। कभी कभी ऑफिस में इतना घुस जाता है आदमी और बाद में 20-25 साल के बाद ऑफिस में वो श्रेष्ठ बन जाता है, सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन को प्राप्त करता है, पर तब तक उसकी पत्नी उससे बिछुड़ गई होती है, बोलती है ऐसा समय नहीं देता है मेरे को, और बच्चा पता चलता है कि आजकल दारू पीता है और ड्रग एडिक्ट हो गया है, मैंने कॉलेज में जाके देखा भी नहीं, कौन से कॉलेज है मुझे नहीं मालूम, पैसा भर रहा हूं ना मैं खून पसीने की कमाई, मेरे बच्चा सबसे अच्छा कॉलेज में जाए, अब क्या कर रहा है मेरे को क्या मालूम, मैंने उसका जिम्मेदारी निभा दिया, पैसा दे दिया। ऐसा नहीं है, गुरु न सस्यात, सदनु न सस्यात, पिता न सस्यात, जनि न सस्यात, दैवम न सस्यात, न पतिम न सस्यात, नमो चाहिए तत् समुपेत मृत्यु। कोई ये पात्र हम अदा करने के लिए योग्य नहीं है, अगर हमारे जो ऊपर निर्भर हैं उनको क्वालिटी टाइम देने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा जिम्मेदारी क्या है, पिता के रूप में मेरा जिम्मेदारी क्या है, पुत्र के रूप में मेरा जिम्मेदारी क्या है, पति के रूप में मेरा जिम्मेदारी क्या है, पत्नी के रूप में मेरा जिम्मेदारी क्या है, एक अध्यक्ष किसी संस्था के रूप में मेरा जिम्मेदारी क्या है, और उस जिम्मेदारी क्या है उसका गोल, हमारा अलग अलग रोल और उस रोल में अलग अलग गोल ये जानना जरूरी है। हो सकता है एक्सपर्ट कोई आदमी रोल भी जानता है गोल भी जानता है और धीरे धीरे अच्छे तरह से अपना जीवन, अपना पूरा हफ्ता, अपना पूरा दिन, अपना पूरे साल को अच्छे तरह से मैनेज करके सारा गोल उसने अचीव कर लिया, बच्चे भी ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, भौतिक रूप से सब खुशी है, और मैं मर गया अगले दिन में कुत्ता बिल्ली बन गया तो क्या फायदा, क्या फायदा। रूपात कहे हमारे बहुत बड़े देश के बहुत बड़े नेता थे, अच्छे तरह से अपना निभाया होगा, बच्चों को भी बनाए उसके, वो भी देश के बड़े बड़े अध्यक्ष बन गए, पर उनका अगले जन्म में क्या हुआ वो यहां इस पब्लिक फोरम में मैं नहीं बोलता पर बताया एक जगह ऐसे प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में प्रभुपाद ने बताया, इतना बड़ा देश का नेता और बाद में अगले जन्म में कहीं दूसरे देश में कुत्ता बन गया। कुत्ता क्या होता है, अपने गली में मैं भो 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 चला तो कोई नहीं आने का, अगर वही देश का मैं नेता करोगे तो नेता बनोगे कहीं, पर अगर कुत्ते बिल्ली की भावना हो, खाना पीना सोना, तो नेता भी बनोगे और कुत्ता भी बनोगे, तो कुत्तों के नेता बनोगे, और मोटा कुत्ता होने के कारण ये सारी कुत्तियां ये सारे बच्चे मेरे हैं, और इस एरिया में कोई आएगा भो 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 ठीक है तुम्हारी इच्छा, जैसी जैसा इच्छा वैसा साधन जोड़ेंगे भगवान। तो अगर ये सारे पात्र और उसके सारे जो गोल हैं, उसकी केंद्र अगर कृष्ण नहीं है, अगर मैं पति हूं, ठीक है, कृष्ण आदर्श रूप से एक पति का किस तरह से एक गोल दे रहे हैं, उसे मुझे निभाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं कर रहा हूं तो कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, और वो मेरा जो पात्र है उसको मैंने ठीक से नहीं निभाया। क्यों? क्योंकि कृष्ण की अपेक्षा क्या है? जो व्यक्ति इस पात्र को स्वीकार करता है उसे कैसा करना चाहिए और उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो गीता में दिया गया है, वो भागवत में दिया गया है। तो गीता भागवत के अध्ययन से हमें जानना चाहिए कि हमारे जीवन में हमने जो जो पात्र स्वीकार किया है उस पात्र की परिपूर्णता कब हुई, कैसे हुई। और तब चाहे आप जो भी पात्र निभा रहे हो, 10, 15, 20 पात्र निभा रहे हो, फिर भी कृष्ण को केंद्र में रखें। कृष्णा इज द सेंटर ऑफ आवर लाइव्स, ऑफ आवर रिलेशनशिप्स, ऑफ ऑल आवर एक्टिविटीज, ऑफ ऑल आवर रोल्स। दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है टू बी कॉन्शियस ऑफ कृष्णा इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी थिंग, इन एवरी वॉट एवर वी डू। और इसीलिए यत करोषि दशनाशि यत जुहोषि ददासि यत तपस्वी कौंती यत कुरुष मत अर्पणम। जब हम लोग इस भावना से करेंगे कि ये कृष्ण का परिवार है, ये मेरी पत्नी जो है ये एक वैष्णवी है, कृष्ण की है, ये पति है, ये बच्चे है, ये कृष्ण के दिए हुए संपत्ति है, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जैसा कृष्ण चाहते हैं उस तरह से मैं इनका सेवा कर रहा हूं और कर रही हूं, तब जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी शत प्रतिशत आप निराशक्त रहोगे। क्यों? क्योंकि मैंने अपना जिम्मेदारी 100% कर दिया। अब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और ये सब जिम्मेदारी करते हुए किस लिए कर रहे हो? क्योंकि कृष्ण चाहते हैं। अगर मैं इस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करूंगा, कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। अगर इस व्यक्ति के साथ मेरा ऐसा व्यवहार होगा, कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता पर फिर भी मैं करूंगा क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करता है। और मुझे बहुत सारी चीजें अच्छा लगता है पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। कभी कभी लगता है इस व्यक्ति को थोड़ा मैं अपने मन की बातें बताऊंगा आज, क्या कह रहा है, पर नहीं कहूंगा। अगर कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे नहीं कहूंगा। कुछ चीजें मैं क्यों कहूं, करने दो, जाने दो। नहीं, मैं कहूंगा अगर कृष्ण प्रसन्न होंगे। इसीलिए कभी कभी हम देखते हैं एक शुद्ध भक्त का कभी कभी शब्द, उनके शब्द जो हैं वज्र से भी कठोर या पुष्प से भी कोमल होते हैं। जो हमारे लिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और हमारी अंतिम भलाई के लिए अच्छा है, वही वो करते हैं। इसीलिए एक वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाए, खासकर शुद्ध भक्तों की क्रिया को हम समझ नहीं पाते। नारद मुनि की आंखों से आंसू आ रही थी, दया की आंसू आ रही थी जब उन्होंने मणिग्रीव और नलकुबेर को शाप दिया, दयापूर्वक शाप दिया। आप क्या दयापूर्वक शाप दिया? हां, अर्जुन ने बड़े कृपापूर्वक तीर मार के सबको मारा, बड़ी नम्रता, तृणादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णु अमानिना मान देन। ये उसका हरि कीर्तन था, कृष्ण के गुणगान में कीर्तन, कीर्तिगान, कृष्ण के कीर्तन में मैं शूट करूंगा। तो इसलिए यहां जब समय आया तो निकाल सकते थे, सब चीजों से निराशक्त हो सकते थे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो कुछ भी मैं 24 घंटे कर रहा हूं, 365 दिन कर रहा हूं, पूरे जिंदगी से फ्रॉम द वूम टू द टूम, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी मैं कर रहा हूं, कृष्ण केंद्र है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। जैसे प्रभुपाद सुंदर उदाहरण देते हैं, एक स्त्री जब एक पुरुष से विवाह करती है तो उसके बहुत सारे रिश्ते नाते हो जाते हैं, वो पुरुष के माता पिता, इसके माता पिता, उसके चाचा मामा, इसके भी चाचा मामा, पर सारे रिश्ते नाते जितने उसके पति से हुए उसका केंद्र कौन है? ये पति है। कल तक वो सब अजनबी थे, ये बुढ़े के मेरा क्या लेना देना, पर आज ये बूढ़ा मेरे ससुर जी हो गए, माताजी पिताजी हो गए। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति से मेरा संपर्क हो गया। तो जितने सारे नए रिश्ते नाते जुड़े उसके केंद्र कौन है? ये व्यक्ति। तो इस तरह से ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हर एक जीव भगवान का अंश है। ये जानते हुए जब हमारे कार्यकलाप होंगे तो हालांकि हम सारे जिम्मेदारी निभा रहे हैं पर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को केंद्र में रख के कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं, इसको कहते हैं कृष्ण भावना। और अगर ऐसा जीवन कृष्ण भावना में जिया, उस व्यक्ति के लिए अंत में कहना कि हरि बोल बास हो गया, अभी मेरे को बास कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना, बास लेट गो। इट इज वेरी इजी टू लेट गो एट द एंड, अंत में अगर सब कुछ को ऐसा मतलब ठीक है हो गया, छोड़ना बड़ा आसान है। अगर थ्रू आउट आवर लाइफ पूरे जीवन भर हमने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया है, जैसा अगर मैं आपको एक टेप रिकॉर्डर देता हूं, मैं आपको एक टेप रिकॉर्डर देता हूं, कहता हूं कि प्रभु जी आप ये टेप रिकॉर्डर को रखना आपके पास, मैं बाहर जा रहा हूं यात्रा के लिए और जब आऊंगा ना वापस तो आपसे ले लूंगा, ठीक है आप रखोगे अपने पास और मैं एक महीना के बाद यात्रा में जाके आऊंगा, प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा टेप रिकॉर्डर मुझे वापस दीजिए। कौन सा टेप रिकॉर्डर, क्यों देना है प्रभु जी, ये बहुत अच्छा है, अभी मैं आदत हो गया मेरे को कैसा चलाना है, अब मेरे पास ही रहने दो। ये एक एक्सट्रीम हो गया। और दूसरा एक्सट्रीम है, प्रभु जी आप मेरा टेप रिकॉर्डर, वो बच्चे ने फोड़ दिया उसको, टूट गया, ये देखिए ये उसका स्पीकर है, ये उसका एंटेना है और ये उसका हैंडल है, लीजिए उधर पड़ा हुआ है, वो कमरे में हैंडल, ये कमरे में स्पीकर, तो इज नॉट ए जेंटलमैन। तो इस तरह से भगवान ने हमको शरीर दिया और इस शरीर को जिस जगह में दिया उसके अनुसार हमारे रिश्ते नाते देश बंधु जो भी आ गए, कुछ समय के लिए दिए हैं 70-80 साल के लिए और फिर अंत में कहेंगे हरि बोल प्रभु तुम्हारा समय आ गया, अभी सब मेरे को वापस दे दो, तुमको अगले जगह भेज रहा हूं मैं। नहीं 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 प्रभु, इसको मैं नहीं देना चाहता, मेरी बच्ची मेरे पत्नी मेरे बच्चे, ठीक है रखो, छीन के लिया जाएगा, मृत्यु सर्वहरस चाह, नहीं दोगे? कैसा नहीं दोगे, मेरे मैं तेरे को एक महीना पहले दिया था, मेरा टेप रिकॉर्ड लाएगा? इतना दुख होता है वो टेप रिकॉर्डर के बारे में सोचते सोचते मर जाएगा आदमी, जो उसका था ही नहीं, जो उसका था ही नहीं उसके बारे में सोच के मर जाएगा, और अगले जन्म में कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप में पैदा होगा टेप रिकॉर्डर चलाते जो भी गए। क्योंकि अंतकाल यम यम आप स्मरण भाव चीजें अंत काले वर। अच्छा किसका देना है, एक हो गया पूरा आसक्त होना, अब जरूरत से ज्यादा निराशक्त होना मतलब क्या, जरूरत से ज्यादा निराशक्त होना मतलब किसका बच्चा किसका बाप। अरे भागवत कहता है महाराज चित्रकेतु का पढ़ो, हमारे 84 लाख योनियां माता पिता हो गए प्रभु, ये सब कुछ नहीं, छोड़ो अभी से छोड़ दो इनको। इसका मतलब ये है कि टेप रिकॉर्डर मेरा थोड़ी है, खिड़की से ऊपर चौथे माले से नीचे फेंको उसको, और जब वो आके कहेगा कि मेरा टेप, तेरा टेप रिकॉर्डर किसका है प्रभु, किसी का नहीं होता, फेंक दिया, मेरा थोड़ी है वो। तो ये दो एक्सट्रीम है, पर जो व्यक्ति समझता है कुछ भी मेरा नहीं है पर मुझे एक जिम्मेदारी दिया गया है और जब तक वो मेरे नियंत्रण में है तब तक मेरा खुद का जो प्रॉपर्टी है उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी पूर्वक उसका मैं देखभाल करूंगा, पर 24 घंटे ये स्मरण रहता है ये मेरा नहीं है ये कृष्ण का है, और क्योंकि कृष्ण की कृपा से ये सब उपलब्ध है, इसको जिस तरह से जितना अच्छा हो सके, जैसे हम लोग सुबह आके भगवान को फूल अर्पण करते हैं। एक बार एक प्रवचन में राधा स्वामी महाराज बता रहे थे, सुबह हम लोग गुरु पूजा करते हैं, गुरु पूजा में हम लोग एक फूल अर्पण करते हैं। हर रोज गुरु श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगवत सदमा बोलते बोलते हम लोग फूल अर्पण करते हैं। जनरली एक रिचुअल हो जाता है, हो गया अभी दर्शन हो गया, जपा हो गया, दर्शन हो गया, अभी गुरु पूजा होने खाना धन हो गया, फूल रख दिया, ऐसा कर दिया, कीर्तन किया, चला गया, बस हो गया, मैकेनिकल हो जाता है वो। मैकेनिकल हो सकता है, गुरु पूजा हो, मंगल आरती हो, वो भी मतलब मैकेनिकल हो सकता है। उसके बाद श्री कृष्ण चैतन्य नरसिंह नमस्ते नरसिंह है, जैसा एक्चुअली नरसिंह आरती पूछती है ना, नरसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय ना, वृंदावन तुलसी देवी, अलग आ जाता, अपने आप आ जाता है। एक बार हम लोग अलग कर रहे थे, सिर्फ नरसिंह आरती कर रहे थे, हम लोग एक गाड़ी में जा रहे थे, तो बच्चे गुरुकुल के बच्चे को बोला नरसिंह आरती गाओ, क्योंकि तो नमस्ते नरसिंह सब किया, नरसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, वृंदावन तुलसी देवी, क्योंकि कर करके आते थे बेचारे को। तो अगर हम लोग अर्पण कर रहे हैं फूल, तो बता रहे थे क्यों अर्पण कर रहे हैं। फूल अर्पण करने का मतलब है कि श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा बंधु मुई साम, कृतज्ञता पूर्वक हर रोज अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हैं कि प्रभुपाल जी आपकी कृपा से हम कृष्ण की कृपा को प्राप्त किए और हमें उनसे याद करना चाहते हैं, ताकि पूरा पूरा दिन जो मैं कार्य कर रहा हूं वो आपकी प्रसन्नता के लिए हो। और ये भावना जो है वो हम कैसे अर्पण करते हैं, पुष्प के द्वारा। देखिए आप किसी से, हरे कृष्ण, आप किसी से प्रेम करते हो, नहीं करेंगे क्या लगता, आप अगर किसी को प्रेम करते हो, वो प्रेम को कैसा व्यक्त करोगे, प्रेम को व्यक्त करने का तरीका है कुछ उसको उपहार दोगे, ददाति प्रतिगृहणाति। एक्चुअली ये प्रेम का प्रदर्शन करने का लक्षण है, क्योंकि प्रेम एक सूक्ष्म चीज है, तो उसको जैसा एक कोई सूक्ष्म चीज है उसको तो एक कवर डालने की, जैसा वाणी है, ये वाणी जो है बड़ा सूक्ष्म है, पर इसको अगर कैप्चर करने के लिए कैसेट होना चाहिए या सीडी होना चाहिए। ऐसे हमारे जो प्रेम है उसको अगर किसी को दिखाना है, देना है, कैसे दोगे आप, अंदर से निकाल के हृदय से दे तो नहीं सकते, वो बड़ा सूक्ष्म चीज है। तो उसको हम लोग एक फूल के रूप में या एक प्रसाद के रूप में या कुछ कुछ वस्तु के रूप में देते हैं, एक चिट्ठी के रूप में, एक लेटर के रूप में कुछ दे रहे हैं। एक्चुअली हम क्या दे रहे हैं, चाहे वो 10 रुपए का चीज क्यों ना हो, पर अगर बड़े प्रेम पूर्वक दे रहे हैं तो वो 10 रुपया का चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या एक प्रतीक है और किस तरह से किस भावना से दे रहे हैं वो फर्क करता है। और उस भावग्राही जनार्दन, भगवान जो है उस भाव को स्वीकार करते हैं। जैसे विदुर ने क्या दिया, विदुर की पत्नी ने, वो कोई कहता है केला दिया, कोई कहता है शाक दिया, कुछ भी दिया, कुछ भी नहीं था, पर जो था अपनी यथाशक्ति उसको उसने प्रेम पूर्वक दिया। तो शाक नहीं देखी या केला नहीं देखे, वो केला दो या छिलका फेंको या छिलका दो या केला फेंको चलेगा, पर किस भावना से तुमने दिया उसे स्वीकार किया। तो इस तरह से जब हम प्रभुपाद जी को फूल अर्पण कर रहे हैं, एनीथिंग कैन बिकम मैकेनिकल। वो बोले हम लोग अपना पूरी दिन का जो चेतना है वो अर्पण कर रहे हैं, और वो चेतना कैसा अर्पण कर रहे हैं, वी वॉन्ट टू गिव द बेस्ट। अगर किसी को आप फूल दे रहे हैं, सूखा हुआ, मुरझाया हुआ, जिसमें गंध ही नहीं है, किसी ने उपयोग ऑलरेडी किया, फेंका हुआ था, फ्री में मिल गया, वो दे रहे हैं किसी को, तो इट विल नॉट बी अप्रिशिएटेड, बेस्ट देना चाहिए। तो इसी तरह से जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये प्रतीक है फूल के द्वारा, हम प्रभुपाद को कह रहे हैं कि कृतज्ञता पूर्वक आपने जो कुछ हमें दिया, इतना कुछ दिया, कृष्ण भक्ति दिया, कृष्ण नाम दिया, गोलोक प्रेम धन दिया हमने, आपने आपकी कृपा से, तो हम क्या दे सकते हैं आपको, एब्सोल्युटली हम कुछ नहीं दे सकते, पर फिर भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जैसे भगवान कहते हैं पत्ता पुष्प प्रेम से दो, जो कुछ भी यथाशक्ति हम लोग प्रेम से आपको अर्पण कर रहे तो वो प्रेम देखते हैं भगवान। इस तरह से अगर ये भावना ये हो कि भगवान की कृपा से हमें एक मनुष्य योनि मिला, एक अच्छे परिवार में जन्म मिला और भक्तों का संपर्क मिला, सब कुछ मिला, अब उसके अनुसार जो मेरी जिम्मेदारी भी क्यों ना हो, जो कुछ भी मेरा सेवा क्यों ना हो, इसको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के आदेश के अनुसार, कृष्ण को कृष्ण के इच्छा के अनुसार, उनके प्रतिनिधियों की इच्छा के अनुसार जीना, और अंत में जब भगवान कहेंगे हो गया, आई एम कंप्लीटली हैप्पी, नाउ गिव मी, गो टू द नेक्स्ट प्लेस, अब ये सब दे दो मुझे, ठीक है, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और अब जब समय आया, एक क्षण के अंदर कहेंगे हरि बोल, धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत कृतज्ञतापूर्वक आपने कम से कम 70-80 साल मुझे इतना अच्छा सेवा दिया, इन बच्चों को देखभाल करने के लिए, इन स्त्री को, इस पुरुष को, इसके मां बाप को, इस सेवा देखा, एक सेवा दिया मेरे को, एक वैष्णव सेवा दिया मेरे को, और अभी मेरे को बोल रहे हो दूसरी सेवा के लिए जाओ, आप जहां चाहोगे जाने के लिए तैयार हूं मैं, क्योंकि मुझे चीजों से लेना देना नहीं, मुझे आपकी प्रसन्नता का लेना देना है, आपको प्रसन्न करना है, और आप जो सेवा आज कहेंगे उस सेवा में करने के लिए तैयार हूं। ये भावना जिसके लिए होगा उसके लिए इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा, उस व्यक्ति के लिए, जैसे प्रभुपाद को लोगों से पूछा गया कि आपकी कोई इच्छा है, बोले कोई इच्छा नहीं, हो गया, आतुर नहीं थे, उनको मालूम था पृथ्वी ते आचे जतन अगर आदिग्राम था, महाप्रभु इज रनिंग दिस मूवमेंट, महाप्रभु चला रहे हैं, मेरे गुरु के आज्ञा के अनुसार मुझे सेवा दिया गया था, मैं कर दिया, अभी मुझे दूसरा वापस बुलाया जा रहा है, ठीक है, अरे जीबीसी का क्या होगा, 11 लोगों को बोला था, अगर 12 लोग 12वां आ जाए तो क्या होगा, क्या होगा, जो होगा, मैं थोड़ी कर रहा था, मैं कर रहा था उनके आदेश के अनुसार कर रहा था, अभी हो गया। निमित्त मात्र भव सव्य साक्षी, मैं एक निमित्त था, हो गया, अभी जैसे अर्जुन को जब तीर चला रहा था, पर जब वही बाण, वही धनुष, वही रथ, वही सब कुछ, पर भगवान के पत्नियों को बचा नहीं पाया, बाद में समझ गया, प्रभु मेरे को आपने एक मिशन दिया था और मिशन के लिए जितना जरूरी है उतना पावर दिया था, अभी आपने पावर स्विच डाउन कर दिया, बस मतलब हो गया प्रभु, निकलो, थैंक यू, हरे कृष्ण, बड़े खुश हुए, दुख नहीं हुए, अरे इतना बड़े बड़े महारथियों को मारा था, आज इन लोगों को मार के ही जाऊंगा, नहीं, उस समय वो कार्य करने के लिए हमें शक्ति दिया था, और प्रभुपाद को 40 साल तक एक व्यक्ति का परिवर्तन करने नहीं हुआ, क्या उस समय शुद्ध भक्त नहीं थे प्रभुपाद, थे, पर 10 साल के अंदर हजारों भक्त, कितने सारे मंदिर, लाखों पुस्तक बिक रहे हैं, अभी जब समय आया कोई इच्छा नहीं, जैसे आपकी इच्छा प्रभु। तो जो व्यक्ति पूरे जीवन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण के आदेश के अनुसार जिया है और कृष्ण का स्मरण करते हुए, कृष्ण टू बी कॉन्शियस ऑफ कृष्ण, कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स टू बी कॉन्शियस ऑफ कृष्ण, तो कृष्ण भावना में जिसने पूरा जीवन भर जिया है उसके लिए मृत्यु के समय करना आसान है। और सबूत क्या है कि हम लोग परीक्षा के लिए, अंतिम परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, सिंपल टेस्ट, जैसा फाइनल टेस्ट तो साल के अंत में आता है, पर बड़े कृपा पूर्वक टीचर लोग सरप्राइज टेस्ट, यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, आजकल तो डेली टेस्ट क्योंकि टेस्ट हमको बताता है कि हाँ हम कितने पानी में हैं, कितने ऊपर हैं। तो ये टेस्ट क्या है, हर रोज जब आपको बोला जाता है सब कुछ छोड़ के अभी 16 माला कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो, उस समय कितने विचारधारा हमारे सर पे आते, देखिए अरे ये नहीं किया, वो बाकी है, ये करना है। अब एक दिन का 16 माला डेढ़ घंटा में कृष्ण को केंद्र में रखकर और सब चीज को बाजू नहीं कर सकते, तो फिर मृत्यु के समय कैसे करेंगे प्रभु? नहीं हो पाएगा। ये आचार्यों की कृपा है कि ये साधना का मतलब है, याद रखो एक दिन सब कुछ छोड़ के पूर्ण रूप से कृष्ण को करना पड़ेगा, उसके लिए कम से कम डेढ़ घंटा का हर रोज सरप्राइज टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट नहीं, फिक्स टेस्ट। इस समय कम से कम इतिमति रूप उपकल्पिता वित्रिष्णा, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। उस समय हमको देखना चाहिए, एक्चुअली जब जब के समय जो जो विचार आते हैं ना, वो विचार कैसे हैं, उसको हम लोग अपना समझ रहे हैं कि मैं अगर ये नहीं करूंगा तो कैसा होगा, पर उस समय कम से कम ट्रेनिंग लेना चाहिए कि नहीं मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, अगर कृष्ण की इच्छा नहीं हो तो मैं सर पीट लूं दीवार पे, कुछ नहीं होने वाला, और अगर भगवान चाहते हैं तो मेरा बिना कोशिश के अपने आप लास्ट मोमेंट कैसा होता है पता नहीं पर हो जाता है। दुष्करम सुकरम भवेत, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करता है मुश्किल से मुश्किल चीज ऐसा हो जाता है समय आने पर, और जो कृष्ण की स्मृति महाप्रभु की स्मृति नहीं करता है, चैतन्य महाप्रभु को भूल जाता है, छोटी सी चीज सर पीट लो हाथ पैर मार लो कुछ कर लो नहीं होने वाला हो, ठीक समय पे कुछ तो आके अटकता है बीच में 100%, तब समझ में आता है कि तुम करने वाले नहीं हो। बड़े बड़े हम योजना बना ले पर कृष्ण की इच्छा नहीं हो तो उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी, नहीं होगा वो कार्य। दिस इज टेस्ट, बार बार हमको भगवान दिखा रहे हैं पर हम देख नहीं पाते, ये हमारा परीक्षा है। कम से कम जब हम अपना 16 माला करते हैं उस समय तो कम से कम कृष्ण को केंद्र में, इति मतिर उपकल्पिता, मति हमारी थिंकिंग फीलिंग विलिंग सब, उपकल्पिता एक जगह फोकस, वित्रिष्णा और कोई इच्छा नहीं भगवान की प्रसन्नता के लिए। कृष्ण वॉन्ट्स मी टू चैंट हिज ग्लोरीज, प्रभुपाद वॉन्ट्स मी टू चैंट हिज ग्लोरीज ओनली, नथिंग एल्स। एक निवृंदावन के एक भक्त थे देवानंद प्रभु, वो आए थे, बहुत अच्छा बोला उन्होंने, और तुम लोग हृदय शुद्ध करने के लिए वो भी छोड़ दो, सिर्फ आप इसलिए जप करो कि कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, बस कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है, आप हरे कृष्ण बोलते हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है सुन के, और कुछ मन में उस समय मत लाओ, आया तो आने दो बस आप सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के, कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं आपको जप करते हुए देख के, आपको कोशिश करते हुए देख के, ये सबूत है कि महाजन है भीष्म, और ये सबूत है कि 24 घंटे पूरे जीवन भर भीष्म पितामह ने जो कुछ भी किया वित्रिष्णा, उसमें उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं थी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसका सबूत क्या है, लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। जब परीक्षा आया तो उन्होंने दिखाया एक क्षण के अंदर, युधिष्ठिर महाराज को अभी दान धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, योग धर्म, कितना सारा धर्म सब बोले, पर जब एक क्षण के अंदर समय आया तो बोले सब छोड़ो, फोकस ऑन कृष्ण। तो इस तरह से दूसरा चर्चा था, दूसरा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, सात्व तो पुंगव, शायद कल चर्चा करेंगे 9 बज गया। तो इस तरह से भागवत में, इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, प्रभुपाद क्या करते हैं, भागवत जो है एक एक शब्द, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं एक श्लोक भी आप समझ गए तो आपका जीवन सफल, आधा श्लोक भी समझ गए तो आपका जीवन सफल, एक शब्द भी आप समझ गए तो आपका जीवन सफल। इसका मतलब यही है, रसम आलयम, रस से भरा हुआ है, सिर्फ उसको दबाओ तो ऐसा, मतलब क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज के अंदर जाता है, सिर्फ थोड़ा आपकी शक्ति जितना शक्ति दबाओगे उतना जूस निकलेगा। ये जूस से भरा हुआ ये भागवत, इसको सिर्फ स्क्वीज आउट एंड ड्रिंक, ऐसा रस है इसके अंदर। पर आचार्य हमको सिखाना चाहिए थे कैसा वो मैंगो से आम रस निकालना, उनका तरीका है वो। परपोर्ट, प्रभुपाद कहते थे दिस परपोर्ट्स आर माय एक्सटेसिस, या दिस वन मोर वर्ड यूज हम स्पिरिचुअल एक्सटेसिस, डिवोशनल एक्सटेसिस। ये जो शब्द एक्चुअली प्रभुपाद कहे हैं ना, ये जो प्रभुपाद ने शब्द, प्रभुपाद का तात्पर्य क्या है, उन्होंने अपनी आचार्यों की कृपा से श्लोक को उन्होंने ऐसा ऐसा मरोड़ा है तो उसमें से जूस निकला, वो जूस है इसका। प्रभुपाद जी का तात्पर्य है ना, उन्होंने एक भागवत श्लोक को लिया और थोड़ा ऐसा दबाया उसको, क्योंकि रसम आ रहा है ना, दबाया तो जो जूस निकला वो जूस परपोर्ट है उनके। तो हम पी सकते हैं उसको, तो इस तरह से इति मति रूपकल्पिता विदृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जाए। किसी का कोई प्रश्न है या? यस विश्वनाथ प्रभु,
एवरीथिंग इज फिक्स्ड एंड बाकी इज ऑप्शनल। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट अंदर
है कि एवरीथिंग इज फिक्स्ड
एंड एवरीथिंग इज फिक्स्ड एंड
अच्छा इन द भागवतम समबडी से नॉट मी ओके ओके I was thinking when I said last.
एक बार इसके पहले भी आपने बताया था कि जो हमारा भौतिक जीवन है वो फिक्स है, अकॉर्डिंग टू अवर कर्मा पास है, और भक्ति तो होने आवश्यक है, दो ही दिन भक्ति होंगे, अदरवाइज एवरीथिंग इज फिक्स। तो एक ऐसे समझा जाए जैसे एक कृष्ण कॉन्शियस बनते हैं जो बिजनेसमैन है, वो बताते हैं कि नौ के बाद कृष्ण को भूल जाता हूं बिकॉज आई वर्क फॉर कृष्ण एंड देन आई कैन बैक
नौ के बाद कृष्ण को भूल जाते हैं और छह के बाद याद करते हैं। दो चीज व्हाट आई कैन इमीडिएटली थिंक, एक नौ के बाद और छह के बीच जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो अगर इफ इट इज विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड देन इट्स ऑल राइट, देन इट इज फॉर कृष्ण। अगर उसके दौरान जैसा चार नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए कम से कम, ठीक है, और बेसिक डीलिंग्स, बेसिक इंटेग्रिटी अकॉर्डिंग टू शास्त्र, अगर उसमें रहते हुए आप कार्य कर रहे हो ना, दैट इज द फर्स्ट टेस्ट दैट इवन यू मे नॉट बी थिंकिंग ऑफ कृष्णा। इट्स नॉट दैट व्हेन अर्जुन वाज शूटिंग एरोज ही वाज चैंटिंग हरे कृष्णा, बट व्हाई वाज ही शूटिंग एरोज, क्यों तीर चला रहे थे, क्योंकि माम अनुस्मर युद्धे च, भगवान का आज्ञा था और आज्ञा पालन करने के लिए वो चला रहे थे, पर फिर भी उन्होंने गुस्से में कर्ण को मार सकते थे, जब वो निस्सहाय था उसको मार सकते थे, पर ही वुडंट हिट। जब कृष्ण ने बोला तभी उन्होंने उन नियम को तोड़ा। लड़ाई में गुस्सा होता है, लड़ाई में कभी कभी लगता है इसको उड़ा दूंगा अभी, ये तो पीछे मुड़ के खड़ा है ना, अभी उड़ा दे उसको, देर इज ए ग्रीड, देर इज एंगर, बट स्टिल ही नेवर ब्रेक्स द फ्रेमवर्क ऑफ द प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय कृष्ण। देन
even though you are not consciously thinking of Krishna, still it is Krishna consciousness. That is first test. Second test, कि आप सब वो काम करते हो, काम करने के बाद फल मिलता है, उस फल का अगर आप उपयोग कृष्ण के जो ब्रॉड इंस्ट्रक्शंस हैं, आज्ञा, उसके विरुद्ध उस फल का उपयोग करोगे, इसका मतलब आप कृष्ण के लिए नहीं किए हो। हालांकि उस समय स्मरण नहीं किया आप कृष्ण का काम करते वक्त, पर उसका फल का आप क्या करते हो? सादा जीवन, उच्च विचार। Another thing, sorry, I would say, by simplifying your life and purifying your life. Purifying your life means not to engage in sinful activities. तो 9 से 6 के बीच अगर पाप कर्म नहीं हो रहा है और उस कार्य का फल जो मिल रहा है उसको पाप कर्म में नहीं लगा रहे हैं, तो उस हद तक हम लोग शुद्ध जीवन जी रहे हैं। और सिंपल लाइफ मींस अपनी जरूरतों को, शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए जितना जरूरी उतना, हमारे योग्यता के अनुसार, हमारे पोजीशन के अनुसार। कोई राजा है तो उसके लिए एक बड़ा राज्य चाहिए, महल चाहिए, क्योंकि उस कार्य ही ऐसा है। और कोई सिंपल आदमी है तो उसके लिए सिंपल चीज काफी है। तो फल के द्वारा सादा जीवन और शुद्ध जीवन, अगर वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई अवर लाइफ एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू प्यूरिफाई अवर लाइफ, देन प्यूरिफाइंग लाइफ अवर चैंटिंग हरे कृष्णा, फॉलोइंग साधना, एंड देन वंस वी गो इन टू द वर्क, फुली वर्क कॉन्शियस, देन दैट वर्क इज ऑल्सो यत करोषि मत तत् कुरुष मद अर्पणम, देन इट इज ऑफरिंग टू कृष्णा, देन इट कैन बी। अगर भूल भी गए 9 से 6 चलेगा, पर भूले नहीं है आप। जैसा एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, वो किसी फैक्ट्री में जाता है, ही शुड नॉट फॉरगेट आई एम रिप्रेजेंटिंग सम कंपनी। और एक कोई डीलर आया और वो बोलता है कि मेरे को 5% तू दे सकता है क्या? बोले नहीं, 4% तक दे सकता हूं, क्योंकि मेरे को कंपनी ने बताया कि इतना तेरा है, इससे ज्यादा ना तू नहीं दे सकता। दैट्स ऑल राइट, बट इफ ही स्टार्ट्स डूइंग, यू नो, चलो मैं 10% दे ले लिया, तू मेरा आदमी है, देन ही इज गोइंग अगेंस्ट। तो मैं एक कंपनी का प्रतिनिधि हूं और मुझे इतना पावर दिया गया, उस पावर के अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर उस पावर से ज्यादा नहीं, कंपनी का मैं प्रतिनिधि हूं, वो नहीं भूलना चाहिए उसको। और जो फ्रेमवर्क दिया गया उसका उपयोग करो, दैट इज वेयर इज अवर इंडिपेंडेंस। यथेच्छसि तथा कुरु, भगवान ने बोला, मैंने कह दिया है यथेच्छसि तथा कुरु, अब जो करना करो, मैं वो स्वतंत्रता नहीं ले रहा हूं, पर तेरे को बताया हूं ये इसमें करेगा तेरे लिए अच्छा है, इससे बाहर जाएगा तेरे लिए ठीक नहीं है। तो वो स्वतंत्रता यह है हमारा, वो फ्रेमवर्क के अंदर करें कि बाहर करें, वो स्वेच्छा हमारा है, करने के बाद उनकी इच्छा है क्या करेंगे, कैसा डील करेंगे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? या तो दो चीज, एक कार्य करते वक्त किस प्रकार कर रहे हैं एंड उसका फल का क्या करते हैं, ये दो दिखाता है कि हम लोग कोई चीज कृष्ण के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं।
लेकिन मटेरियल
टाइम उनका देखा जब प्यार उठाना भी समाप्त हो गया पीपल आर ट्रेनिंग एंड मिस प्लेसिंग इज देयर बिकॉज ऑफ देयर एग्जाम्पल. तो एक ऐसे हम समझ
फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रीचिंग. What is preaching? How do you define preaching? You say, no, that's not good preaching. I ask you, what is preaching? Can you define what is preaching?
We have to show people what principle you're following. And we have to give principles to them to survive in life.
Saint Francis of Assisi, one of the very great and influential Christian saints, he made a very interesting statement. He says, you preach and preach throughout the day, and if necessary, also speak a few words. बोलते पूरा दिन प्रचार करो और जरूरत है तो दो चार शब्द भी बोलो. Our action speaks so loud that we can't, others can't hear what we say. So therefore, preaching is, everything we do is preaching. Everything we do. It's amazing. If you read Prabhupada Leelamrita, Prabhupada Leelamrita padhoge, 24 ghante, Prabhupada ne kya kiya, kisko kya bola, kyo bola. Simply by seeing a person Bhagavat, you know what is the essence of book Bhagavat. Because he lives by the essential principles. And we are not interested in trying to prove to others that we are Krishna conscious. We want only please Krishna, that's all. If our motivations and intentions are pure, number one. Number two, if we don't know if our motivation and intentions are pure, confirm it with proper authority. Because Chaitanya Mahaprabhu kehte hain ki bhakti lata beech ko shravanam kirtanam se karte waqt bahut sare kya bolte hain weeds, weeds bhi aa jate hain aur weeds hum nahi nikal sakte, hum dekh bhi nahi sakte, hum samajh bhi nahi sakte. To ek aisa mali chahiye jo farak kar sakta hai bhakti lata kya hai aur weeds kya hai aur usko nikal deta hai, nahi ye theek nahi, ye theek nahi. So if we are living whatever way Krishna wants to use us, okay. Mahaprabhu Shri Chaitanya ke jeevan mein Buddhimant Khan jaise karupati log bhi the aur Kolavech Sridhar jaise useless fellows bhi the bhautik roop se. Usko success hi nahi milta tha. Usko phate kapde और उसका रूप भी छेदा था और वो प्रॉफिट करके इतना कम प्रॉफिट के पूरी मार्केट में उससे ज्यादा कम प्रॉफिट में कोई बेचता ही नहीं था. हमेशा भूखा रहता था, चिल्लाता रहता था. एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रीचिंग. कोलावेच श्रीधर का कोई जीवन पढ़ेगा, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों का जीवन ऐसा होगा, नोबडी विल चैंट हरे कृष्ण. But if you see Pundrik Vidyanidhi and Buddhimant Khan, bade bade ekdam Maharaj Pratap Rudra, Maharaj Pratap Rudra ko bhi ichha thi. But all the devotees advised, no? Sarvam Bhattacharya Nityan Prabhu said, nahi. Bola main kaan mein aisa ek ye lagaunga, sadhu ban jaunga, agar yahi mere ko Mahaprabhu ki kripa hai, main sab kuch chhodne ki tayar. Very good, abhi mat chhodo. Ek bhakt एक हमारे सन्यासी के पास आए, उनको मराठी बोल रहे थे, उनको हिंदी मतलब अंग्रेजी नहीं आता था, तो मैं बैठ के ट्रांसलेट करना था. तो वो भक्त ने पूछा, महाराज मेरा एक प्रश्न है. बोले मैं, उसने ऑलरेडी 24 घंटा बिजी रहता है, वो बैंक में काम करता है, तो उसको एक ही समय ट्रेन मिलता है पुस्तक पढ़ने का, वो ट्रेन के अंदर लोकल ट्रेन में, वो भी क्या ऐसा खड़ा रहना पड़ता है, हाथ हिला गए टाइम नहीं, फिर भी ऐसा पढ़ के, लोग ऐसा न्यूज़पेपर रखते सर के ऊपर ऐसा रख के उसमें से पढ़ते रहता. उसने चार बार श्रीमद् भागवतम खत्म किया, तीन बार सीसी खत्म किया, अभी चौथा बार चालू है उसका। तो उसने कहा कि महाराज मैं, उसके बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, एक एक लड़की एक लड़का, लड़की शायद छठी में है, लड़का चौथी में। तो उसने कहा कि महाराज मेरे को कोई इच्छा नहीं है, मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूं और वृंदावन में जाके सिर्फ भागवत और चैतन्य चरितामृत पढ़ते रहना चाहता हूं, आप सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज जी ने बोला आई एम सो हैप्पी, वेरी गुड। अरे वो इतना खुश हो गया, नाचने वाला था। और फिर उन्होंने बोला वेरी गुड, विद दिस कॉन्शियसनेस गो बैक एंड डू व्हाट एवर यू आर डूइंग। अंदर ऐसा रहो, मरकट वैराग्य मत करो, जैसा महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, अभी मरकट वैराग्य मत करो, जब अंदर से हो जाएगा सब काम तो अपने आप बाहर प्रकट हो जाएगा, चिंता मत करो। अभी जिस स्थिति में हो उसमें रहकर अंदर से वो इच्छा तीव्रता को कल्टीवेट करो, और जब अनुकूल समय आएगा तो भगवान उसकी ये देंगे। सो वेयर डिड वी, व्हाट वाज द पॉइंट दैट आई फॉरगॉट, या सो प्रीचिंग, या सो प्रीचिंग मींस यस इवन इन महाप्रभु लीला ड्यूरिंग प्रभुपाद्स टाइम वी सी सम वर नॉट मेटीरियली एक्सपर्ट, दे वर एक्सटर्नली फेलियर्स, सम वर सुपर सक्सेस। बट अगर सुपर सक्सेस होकर कृष्ण भावना से दूर चला गया तो क्या फायदा, और मेटीरियली इतना पुअर हो गया कि वो भी कृष्ण भावना से दूर चला गया तो क्या प्रीचिंग है। सपोज कोई सक्सेस हो गया ऊपर गया, ऊपर गया, वहां से ऊपर ही चला गया, नीचे आया ही नहीं कृष्ण भावना, पैर उसका करोड़ों करोड़ों कमाया, दिखता था तिलक भी दिखता था, कंठीमाला भी दिखता था, बीड बैग भी उसके गले में हमेशा था, अब पैसा भी करोड़ों कमाया, पर बाद में इज दैट गुड प्रीचिंग, आई डोंट थिंक। टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी वी ट्राई टू क्रिएट एन एनवायरमेंट एंड एनकरेज एवरीवन, दैट्स ऑल। इनफैक्ट कृष्णा सेज अदर वे, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धर्म क्षणे। क्यों ले लेते हैं ऐसा, वो भी समझाया गया। भौतिक बंधन मतलब भौतिक रिश्ते नाते, ठीक है, और भौतिक रिश्ते नाते एक माया है कि नहीं। सिर्फ भौतिक रिश्ते नाते हो, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा संसार, ये मैं इतना बड़ा, ये हूं, ये हूं, ये माया है। अच्छा, इस भौतिक माया मतलब भौतिक रिश्ते नाते। अच्छा, उस रिश्ते नाते का कारण क्या है, मेटीरियल रिलेशनशिप्स, द फाउंडेशन ऑफ मेटीरियल रिलेशनशिप इज सेंस एंजॉयमेंट। तू मेरा पीठ खुजला, मैं तेरा पीठ खुजलाऊंगा, तू बंद तो मैं भी बंद। तो भौतिक रिश्ते नाते मतलब काम का संबंध, एंजॉयमेंट इज अ सेंस। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ मेटीरियल एंजॉयमेंट, मेटीरियल रिसोर्सेस। भौतिक सुख तब है जब भौतिक क्या बोलते हैं समृद्धि है, तो दैट इज द फाउंडेशन। जितना पैसा है, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, अगर ये चार चीज आपके पास है तो हजारों रिश्ते नाते, यस्याहं तस्य यस्यार्थः तस्य मित्राणि, यस्यार्थः तस्य बांधवाः, यस्यार्थः स पुमान लोके, यस्यार्थः स च पंडितः। जिसके पास पैसा है, सुंदरता है, विद्वत्ता है, करोड़ों लोग उसके पीछे पीछे हमेशा रहेंगे, तो उसको लगता है कि मैं सही में ईश्वर हम भोगी। और अगर वो भक्त है और ये एक बाधा हो रहा है तो भगवान वो भौतिक रिश्तों को काट देते। कैसे, भौतिक रिश्तों का जड़ है भौतिक इंद्र तृप्ति, और भौतिक इंद्र तृप्ति का जड़ है भौतिक समृद्धि। अगर उसी को ले लिया तो भौतिक समृद्धि नहीं है, तो भौतिक विषय भोग नहीं दे सकते, तो असली जो हमारे तथाकथित रिश्ते नाते हो बोलते हरे कृष्ण जाओगे, और तब असली चीज समझ में आ जाता है कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा ये। ही मे डू इट फॉर सम केसेस, ही मे नॉट डू इट फॉर अदर्स हु इज नॉट रिक्वायर्ड। सो I don't think we should be worried. We will try to present the best thing. But artificially, लेकिन ये preaching के लिए अच्छा नहीं है बोल के मेरे पास पैसा भी नहीं है फिर भी मैं एकदम खास जीन वीन पहन के आऊंगा ताकि लोगों को लगे कि नहीं समृद्धि होना चाहिए. This is hypocrisy. महाप्रभु is, even Krishna likes simplicity. And simplicity means what is outside, that is inside. I am what I am, Baba. Real preaching is, चाहे करोड़पति बन जाए क्या रोड में आ जाए, but I will never leave and I am satisfied in whatever way he keeps and I will chant Hare Krishna. I will never leave chanting Hare Krishna. This is real preaching. And sincere people who are really honest will appreciate this preaching. People who come with a motive, may though for them this is another preaching. But a real sincere person will appreciate. He will see the essence. What is that? वो श्लोक क्या है भागवत का, ये तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि नामानि अनंत शेषोंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति हृणन्ति साधवः. Those who are sincere, honest people, even though externally it's all full of faults, but because they are sargrahi, they see the principle being followed, they'll be attracted. And we don't want hypocritical people to be attracted here. We don't want. We are presenting what we are. Somebody is attracted, all right. If not attracted, artificially to attract them, we don't have to make. We will present, this is what product we have. If you want, you come. There will be rich people here, there will be poor people here, there is everyone here. But all are Krishna conscious. If you want this package, okay. For you, we can't change the package. Our package has been given. The product has been given by acharyas. We are just presenting it. This is the product we sell. According to time place, you may make a little packaging adjustment, but not change the product. This is what we have to offer. Okay, both ho gaya. Spoken. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Sai Gaur Premanandi.